चैतन्य चरितामृत ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानानजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णववांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रण तथान ममले वनवास दुखत मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महाशायतचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत्किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्व अभिनेदुस्त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमात्मस्मि भूर्तेर्महद्भियः इमा पुरो विभू निर्माय शेते यदमूष पुरुष भुङ्क्तेर्गुणान् षोडश षोडशात्मक सलङ्कसृष्ट भगवान् वचांसि मे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमो पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजान्द्रये
हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का स्वागत करते हैं जो चैतन्य महाप्रभु के दिव्य चरित्र का श्रवण करने के लिए आए हैं। चैतन्य महाप्रभु करुणालय अवतार है। रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को नमो महावदान्याय कहा गया है। महावदान्याय का अर्थ होता है महादानी। चैतन्य महाप्रभु महादानी है, क्योंकि भगवान के जितने भी अवतार हुए प्रत्येक अवतार में किसी से कुछ प्राप्त करके भगवान ने कुछ कुछ दिया है। जैसे कि आप सब जानते हो, द्वापर में भगवान कृष्ण स्वयं आए, लेकिन भगवान कृष्ण ने सुदामा पर तब तक कृपा नहीं की जब तक सुदामा कृष्ण के पास नहीं आए। एक मुट्ठी भर पौवा लेकर नहीं आए तब तक भगवान कृष्ण ने सुदामा पर कृपा नहीं की। सुदामा बहुत दूर भी नहीं थे, बहुत नजदीक थे, लेकिन फिर भी जब तक सुदामा कृष्ण के पास नहीं गए तब तक कृपा नहीं की। और भी कई सारे भगवान के अवतार हुए, जैसे रामचंद्र। भगवान श्री रामचंद्र ने भी महावदान्याय का कार्य नहीं किया, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र के सामने बड़े बड़े असुर आए, लेकिन उस असुरों का वध किया। जैसे रावण, भगवान श्री रामचंद्र के सामने रावण आया, लेकिन भगवान के सामने होते हुए भी वह भगवान के प्रति एक रत्ती मात्र भी प्रेम उत्पन्न नहीं कर सका। जिसके सामने भगवान स्वयं खड़े हैं, उस व्यक्ति में एक रत्ती मात्र भी प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। प्रेम की बात छोड़ दीजिए, उसके नीचे का स्तर है भाव, आसक्ति, रुचि, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया। सबसे निचला स्तर है श्रद्धा। उस श्रद्धा का एक टका भी भगवान श्री रामचंद्र के सामने कोई आया उसे नहीं मिला। बड़े बड़े असुर भगवान श्री रामचंद्र के सामने आए, कृष्ण के सामने आए, और भी कई सारे अवतार, जैसे कि नरसिंह देव। चाहे तो हिरण्यकश्यप को उपदेश देकर अपना प्रेम दे सकते थे, लेकिन यह नहीं करके उसे मार डाला। लेकिन परम कृपालु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस अवतार में भगवान ने किसी को मारा नहीं। जिसे भी चैतन्य महाप्रभु को, कोई भी व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को मिलता, पापी तापी शूद्र कोई भी व्यक्ति, चैतन्य महाप्रभु उसे अपना प्रेम प्रदान कर देते थे, प्रेम दान में देते थे। लेकिन फिर भी यहां पर महावदान्याय कहा गया है। महावदान्याय का अर्थ है प्रेम तो दान में देते थे, लेकिन यह नहीं देखते थे कि यह प्रेम देने का पात्र है या नहीं। पात्र पात्र देखे बिना चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक जीव को, यहां तक पशुओं को, म्लेच्छ, यौवन, शूद्र, सभी प्रकार के लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान की, शुद्ध प्रेम प्रदान किया। इसलिए इसे महावदान्याय कहा जाता है। प्रेम तो दिया, लेकिन साथ में पात्रता भी दी। इस संसार के व्यक्ति जो धनी होते हैं, वो दान तो किया करते हैं, लेकिन दान देने पर उसे दानी कहा जाता है। लेकिन वह देखे जो दान लेने आया है, उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए उसे मैं एक पात्र दे दूं और उस पात्र में मैं दान दूं, ऐसे दानी बहुत कम होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु परम करुणालय महावदान्याय, जिसे पात्रता भी दी और अपनी शुद्ध प्रेम शुद्ध भक्ति भी प्रदान की, यह है चैतन्य महाप्रभु। तो उसी चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का वर्णन हम आज यहाँ पर करेंगे। बहुत ही सुंदर वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा दिया गया है। वास्तव में यह जो ग्रंथ लिखा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, जिस ग्रंथ का नाम है श्री चैतन्य चरितामृत, इस पर ही पूरी कथा हो सकती है। क्योंकि चैतन्य चरित जो है वो वास्तव में अमृत है। चैतन्य चरित, चैतन्य महाप्रभु का जीवन लीला वास्तव में अमृत है। स्वर्ग का जो अमृत है, स्वर्ग में जो देवतागण पिया करते हैं, उस अमृत से भी जो चैतन्य चरितामृत बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ऊपर है। क्योंकि स्वर्ग के देवताओं को वह स्वर्ग का अमृत पान करके सिर्फ उम्र बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन का काल बड़ा कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, लेकिन वह स्वर्ग का अमृत पान करके स्वर्ग के देवता भी मरने से नहीं बच सकते। क्षीणे पुणे मृत्यु लोके विशंति, जब जब उसका पुण्य खत्म हो जाता है तब उसे इस संसार में वापस आना पड़ता है। तो यह है स्वर्ग का अमृत। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चैतन्य चरितामृत का पान कर ले तो वह सबसे बड़ा डर मृत्यु से बच सकता है। अमृत का अर्थ ही होता है नमृत, अमृत नमृत, जिसका पान करने से कोई न मरे। तो वास्तव में चैतन्य चरितामृत का जो पान करता है उसके जीवन में कभी भय नहीं रहता है, डर नहीं रहता है, और सबसे बड़ा डर होता है मृत्यु का। यह अमृत पान करके मृत्यु के डर से हम बच सकते हैं। और यह अमृत पान करने के लिए स्वर्ग के देवता भी मरते हैं। भले उसके पास स्वर्ग का अमृत है, लेकिन स्वर्ग के देवता गण भी यह चैतन्य चरितामृत सुनने के लिए, पान करने के लिए तरसते रहते हैं। तो नहीं मरने वाले देवता भी जिस चैतन्य चरितामृत का पान करने के लिए तरसते हैं, तो किसी भी क्षण मरने वाला मनुष्य क्यों इसका पान करना नहीं चाहेगा। वास्तव में मनुष्य जीवन प्राप्त करके कोई इस प्रकार के अमृत का आस्वादन नहीं करता तो उसका जीवन बेकार है। परीक्षित महाराज तो कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य जीवन प्राप्त करके या चैतन्य चरितामृत या श्रीमद् भागवतम कथा नहीं सुनता, नहीं सुनने वाला या तो वह कसाई होगा या तो अपना आत्मघाती होगा। तो यह चैतन्य चरितामृत का पान करके हम भय से मुक्त हो सकते हैं। सभी प्रत्येक जीव को भय है, कोई हमें मार न दे, हमारी मृत्यु न आ जाए, एक्सीडेंट न हो जाए, सभी जीव को भय है। लेकिन गोविंद दास जी लिखते हैं कि अगर इस भय से मुक्त होना चाहते हैं तो उस अभय प्रदान करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण गोविंद के चरणों में हमारा मन लगा लेना चाहिए। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार रिंदरे। जब तक उस चैतन्य महाप्रभु या गोविंद के चरणों में अपना मन नहीं लगाएंगे तब तक हम भय से मुक्त नहीं हो सकते। वास्तव में अगर भय से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान की कथा में चैतन्य चरित में हमारा मन लगाना चाहिए, क्योंकि इस जीवन का कुछ भरोसा नहीं है। कहते कमल दल जल जीवन तलमल, ये जो जीवन हमें मिला है जैसे एक कमल के पत्ते के ऊपर पानी का बूंद रहता है, कब हवा आ जाए और वो पानी का बूंद गिर जाए, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन कब काल आ जाए और हमें समाप्त कर दे कुछ भरोसा नहीं, कभी भी मर सकते हैं हम, कभी भी मर सकते हैं। इसलिए हम जिस लोक में रह रहे हैं इस लोक को मृत्यु लोक कहते हैं, इस पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक कहा जाता है, क्योंकि इस पृथ्वी में रहने वाला जीव कभी भी कैसे भी मर सकता है। कल सुबह कोई जाकर रिपोर्ट निकाले तो किसी को भी कैंसर आ सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं, इस जीवन का कुछ भरोसा नहीं। इसलिए गोविंद दास जी कहते हैं कि इस प्रकार के सत्संग में आकर भगवान के दिव्य चरित्र का श्रवण कर लेना चाहिए, और यह दिव्य चरित्र का श्रवण करके हम वास्तव में भय से मुक्त हो सकते हैं। और यह चरित्र अमृत है, और यह अमृत का पान करके हम मृत्यु से बच सकते हैं। तो यह है चैतन्य चरितामृत। तो उसमें से हम सबसे पहले तो हम यह देखेंगे, आप कहेंगे प्रभु जी आपने 15 मिनट चैतन्य महाप्रभु बोल दिए हैं, लेकिन हम तो यह नाम पहली बार सुने हैं, चैतन्य महाप्रभु। हम कृष्ण को जानते हैं, राम को जानते हैं, नरसिंह वराह कूर्म इत्यादि को जानते हैं, लेकिन यह चैतन्य महाप्रभु यह बात कुछ हजम नहीं हो रही है। और आप कह रहे हो यह भगवान है, और भगवान कृष्ण से भी अच्छे करुणालय है, यह आप कैसे कह सकते हो। और आजकल के लोग तो सबूत भी मांगते हैं, हमें दिखाओ, प्रमाण दिखाओ, सबूत दिखाओ, तब ही हम मानेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, इसके 150 से भी ज्यादा प्रमाण है, सबूत है। लेकिन मैं जानता हूं कि यहां पर सभी लोग श्रद्धालु है, और प्रभुपाद जी की, आचार्य की और हमारी बात पर विश्वास रखने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक सबूत तो होना चाहिए ताकि आप किसी को कह भी सको। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण है, इसका सबूत श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। श्रीमद् भागवतम लिखा गया कलयुग के प्रारंभ में, अर्थात आज से 5000 वर्ष पहले सिर्फ लिखा गया, और कहा गया करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने इमं विवस्वते योगम विवस्वान को दिया था, और विवस्वान ने मनु ने इश्वाकु को, इस प्रकार से श्रुति में यह श्रीमद् भागवतम और इत्यादि ज्ञान था। इसका अर्थ यह है कि करोड़ों वर्ष पूर्व मैं जो सबूत देने जा रहा हूं, यह सबूत करोड़ों वर्ष पूर्व बनाने वाले ने, भगवान ने दे रखा है, और 5000 वर्ष पहले व्यासदेव ने इसे लिपिबद्ध किया है, और उस 18000 श्लोक में से एक श्लोक व्यासदेव जी इस सबूत के तौर पर देते हैं। 11वें स्कंद में कहते कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। ये प्रसंग महाराज निमि बहुत ही सुंदर यज्ञ का अनुष्ठान किए थे, हमें यह बात इसलिए याद आ रही है क्योंकि हमने भी आज एक यज्ञ किया तो बहुत ही सुंदर यज्ञ का अनुष्ठान किए महाराज निमि, और वहां पर नव योगेंद्र, नौ ऋषि जो बहुत ही विद्वान पंडित, सारे शास्त्रों का सार जानने वाले, जिसे नव योगेंद्र कहते हैं, वह नव योगेंद्र वहां पर आ गए। तो उनमें से 9 प्रश्न पूछा गया उस वक्त, और उस 9 प्रश्न का उत्तर देते हुए उस 9 योगेंद्र में 9 ऋषि में से एक ऋषि का नाम है करभाजन ऋषि। और करभाजन ऋषि महाराज निमि को करोड़ों वर्ष पूर्व यह कह रहे हैं कि एक समय की बात है, एक समय में कलयुग आएगा, और उस कलयुग में भगवान का एक अवतार होगा, साक्षात भगवान आएंगे। वह कैसे रहेंगे? तब करभाजन ऋषि कहते हैं कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम। इस कलयुग में वास्तव में कृष्ण वर्ण, द्वापर में जो कृष्ण का रंग था, वही कृष्ण त्विषा कृष्णम, गौर रंग में इस कलयुग में आएंगे। त्विषा अकृष्णम, इसमें संस्कृत की थोड़ा ज्ञान है। कृष्ण वर्ण त्विषा अकृष्णम, द्वापर में तो वह काले रंग के थे, कृष्ण रंग के थे, लेकिन कलयुग में वह अकृष्ण अर्थात काले नहीं, गोरे रूप में आएंगे। और सांगो पांगास्त्र पार्षदम, और वह संग और उपअंग के साथ इस पृथ्वी में कलयुग में आएंगे। तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु का रंग जैसे करभाजन ऋषि ने बताया था वैसा ही गौर वर्ण का है, और चैतन्य महाप्रभु के साथ संग, उपअंग और पार्षद भी आए थे। चैतन्य महाप्रभु के अंग थे श्रीमद् नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, और उपअंग थे गदाधर पंडित और श्रीवास। कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम सांगो पांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय। और वह कलयुग में, वह भगवान इस कलयुग में आकर क्या करेंगे? तो कहेंगे, तो करभाजन ऋषि कहते हैं कि वह इस कलयुग में और कुछ नहीं करेंगे, नहीं किसी को मारेंगे काटेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इस कलयुग में वह यज्ञ संकीर्तन प्राय वह संकीर्तन करेंगे। तम देखते चैतन्य महाप्रभु के जीवन में, चैतन्य महाप्रभु ने, हम देखेंगे लीला में, संकीर्तन आंदोलन की स्थापना की। और करभाजन ऋषि कहते हैं यजंती ही सुमेधस, और कलयुग में जो बुद्धिमान लोग होंगे, सुमेध, मेध का अर्थ होता है बुद्धि, और सुमेध का अर्थ होता है जो अत्यंत बुद्धिमान होंगे, सुष्टु रूपेण, वह इस चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करेंगे और यह संकीर्तन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन यह नाम लेंगे? जो बुद्धिमान होंगे। इसका अर्थ है कलयुग में जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है वही बुद्धिमान है, और जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करता वह मूर्ख है। हम नहीं कहते, करभाजन ऋषि कहते हैं, व्यासदेव जी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, और शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि कलयुग में महामंत्र जो नहीं जपता है वह मूर्ख। तो यह है पहला सबूत, ऐसे 150 से ज्यादा सबूत है अलग अलग, अलग अलग पद्म पुराण में, वराह पुराण में, सभी पुराणों में अलग अलग श्लोक है और सबूत, लेकिन यह है श्रीमद् भागवतम का सबूत कि कलयुग में साक्षात भगवान कृष्ण आएंगे। ठीक है, हम यह तो मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो चैतन्य महाप्रभु के इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर आने का कारण क्या है? भगवान जब इस संसार में अवतीर्ण होते हैं तब कुछ कारण वश आते हैं, कुछ हेतु होता है भगवान का इस संसार में आने का। बिना हेतु के भगवान कार्य नहीं करते। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण को यहां पर आना, इसके दो प्रकार के कारण हैं। एक तो है अंतरंग कारण और एक है बहिरंग कारण। चैतन्य महाप्रभु का, भगवान श्री कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस संसार में आने का अंतरंग कारण बहुत ही दिव्य है। शायद इसे समझ पाना भी मुश्किल हो सकता है। हम देखते हैं द्वापर में आज से 5,500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आए और बहुत ही सुंदर सुंदर लीला की। तो एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण बहुत ही छोटे थे, बहुत ही छोटे। और जैसे कि आप सब जानते हो, नंद बाबा के घर में 84 खंबा है और वह सारे खंबे हीरे और रत्न से जड़ित सारे खंबे थे, हमारी तरह कंक्रीट सीमेंट के नहीं। तो एक दिन की बात है, वह बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण मक्खन चुरा रहे थे और मटकी तहस तोड़ फोड़ कर सारा मक्खन बैठे बैठे खा रहे थे। और उतने में उस बाल गोपाल कृष्ण की नजर एक खंबे की ओर गई और खंबे की ओर जाकर उन्होंने देखा कि कोई मुझे देख रहा है। तुरंत डर गए, जैसे हम कोई गलत कार्य करते हैं एकांत में और कोई अचानक आ जाए तो हम पूरा शॉक, झटका लग जाता है। तो कृष्ण मक्खन मटकी फोड़कर मक्खन खा रहे थे, चुरा रहे थे। उतने में नजर एक खंबे पर गई और कृष्ण ने देखा उस खंबे के पीछे कोई छुपकर मुझे देख रहा है, डर गए। तो वह बाल गोपाल स्वरूप कृष्ण थोड़ा सा मक्खन लेकर उस खंबे के पास गए। वास्तव में वहां पर कोई था नहीं, कृष्ण ने उस खंबे में अपने ही प्रतिबिंब को, अपनी ही प्रतिमूर्ति को देखा था। लेकिन छोटे से बालक थे इसलिए लीला के वश वो जान नहीं सके कि मेरा ही प्रतिबिंब है। कृष्ण को ऐसा ही लगा कि कोई मुझे देख रहा है। तो कृष्ण गए थोड़ा सा मक्खन लेकर और जाकर अपने ही प्रतिबिंब को, अपने ही परछाई को कहने लगे, मैया को मत बताना। तो वह तो एक प्रतिबिंब ही था, जैसे हम अरीसे में कांच में देखते हैं, जैसे हम ऐसे करेंगे तो वह प्रतिबिंब भी ऐसे करेगा। तो प्रतिबिंब ने भी ऐसे कर लिया। कृष्ण ने कहा, समझदार लड़का है। कृष्ण ने कहा, हेलो, मैं थोड़ा मक्खन लाया हूं तुम्हारे लिए, घूस देने के लिए आए थे। ये मक्खन लो, ये मक्खन रखो, लेकिन मैया को मत बताना यह बात। अब प्रतिबिंब क्या जाने, वह तो ऐसे मक्खन तो ले नहीं सकता। तो कृष्ण ने देखा कि वह इतने से मक्खन से संतुष्ट नहीं है, इसलिए कृष्ण गए और बिल्कुल 50% 50-50% करके 50% मक्खन लेकर आए और सामने रखे। ये 50% बिल्कुल सच बोल रहा हूं, आधा मेरा आधा तुम्हारा, लेकिन मैया को मत बताना, बता दिए तो मुझे डांटेगी। तभी वे प्रतिबिंब कुछ नहीं बोला। तब कृष्ण ने कहा, ठीक है, पूरा रख लो, पूरा रख लो, लेकिन मैया को मत बताना। लेकिन वह प्रतिबिंब कुछ नहीं बोला क्योंकि वह कृष्ण का ही प्रतिबिंब था। तब कृष्ण गुस्से हो गए, अरे सारे गाली देकर कहने लगे, मैं इतना दे रहा हूं तुमको, फिर भी ले नहीं ले रहे हो। ठीक है, बता दो अगर बताना है तो मैया को, मैं कोई मैया भैया से नहीं डरता हूं। तो इस प्रकार से कृष्ण अपने प्रतिबिंब को भी नहीं जान सकते थे। और भागवतम में वर्णन है, कृष्ण जब आईने के सामने आते थे तब अपने रूप को देखते ही रहते थे, घंटों भर, 24 घंटा कृष्ण अपने स्वरूप को देखते रहते थे। इतना सुंदर स्वरूप, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी लुभाने वाला कृष्ण की सुंदरता, घंटों भर वह आस्वादन देखते रहते थे। लेकिन भले कृष्ण कितने भी सुंदर हो, कितनी भी सुंदरता हो, अगर उसे किसी की सुंदरता का आस्वादन करना हो तो हम अपनी सुंदरता का तो आस्वादन नहीं कर सकते। तो कृष्ण ने अपनी ही सुंदरता का, अपने ही रूप का आस्वादन करने के लिए इस कलयुग में जन्म लिया। और भी एक मुख्य कारण है भगवान श्री कृष्ण का इस कलयुग में, इस धराधाम पर आना, श्री राधाया प्रणय महिमा की दृशन वान येवा। भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में बैठकर सोचते हैं कि मैं जब गोकुल से मथुरा जाता हूं या द्वारका जाता हूं तब गोपियां मेरे लिए रोती रहती है, जब तक मैं वहां पर रहता हूं पूरा जीवन वह रोती रहती है, तो उसे मेरे साथ प्रेम करने में, मेरे प्रणय में क्या आनंद मिलता है, मेरे साथ प्रेम करने में गोपियों को, श्रीमती राधा रानी को ऐसा कौन सा आस्वादन होता है, कौन सा आनंद मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण को यह आनंद, आस्वादन करने की इच्छा हो गई। भगवान श्री कृष्ण भोगता है, परम सुंदर है, लेकिन राधा रानी कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है और कृष्ण से भी ज्यादा आनंद राधा रानी ले रही है। तो भगवान ने, कृष्ण ने सोचा कि यह राधा रानी मुझ में ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे ये राधा और ब्रज के इतने सारे लोग आनंद ले रहे हैं, मेरे लिए घर बार छोड़ देते हैं, पत्नी पति को छोड़ देती है, बच्चों को छोड़कर, घर को छोड़कर जंगल में निकल जाते हैं, इसमें क्या आनंद है। यह आनंद प्राप्त करने की इच्छा भगवान कृष्ण को हुई। लेकिन भगवान बन के इस आनंद का आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए भक्त बनने की आवश्यकता हुई, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भक्त बनकर इस कलयुग में आए। और भगवान उसी के ही साथ, कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम, कृष्ण ही कृष्ण की भक्ति करके वह आनंद का आस्वादन लिया। यह है गुह्य कारण। खैर, समझ में आए या ना आए, यह है गुह्य कारण। और भगवान श्री कृष्ण के, चैतन्य महाप्रभु के इस संसार में, इस कलयुग में आने के 3 बाह्य कारण भी है। बाह्य कारण यह है, भगवान श्री कृष्ण बहुत अनंत अनंत अवतार है भगवान कृष्ण के। तो भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में जाकर सोचते हैं कि मैं द्वापर में गया, सबसे पहले तो मैंने विवस्वान को ज्ञान दिया, सूर्यदेव को ज्ञान दिया, वह ज्ञान अप्रकट हो गया, इसलिए मैं द्वापर में जाकर अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्जुन को ज्ञान बनाकर इस सारे संसार को ज्ञान दिया। लेकिन कृष्ण सोच रहे हैं कि इतना ज्ञान देने के बाद भी इस संसार के जीव इस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे इस संसार में जाना होगा और इस संसार में जाकर इस ज्ञान को इस ज्ञान के द्वारा किस प्रकार भक्ति करनी है, मैं जब तक करके नहीं दिखाऊंगा तब तक इस संसार के जीव मानेंगे नहीं और भक्ति करेंगे नहीं। तो पहला बहिरंग कारण है चैतन्य महाप्रभु का इस संसार में आने का, कि अपने आचरण के द्वारा, आचरण के द्वारा इस संसार में सभी लोगों को भक्ति देने के लिए आए। दूसरा कारण है भगवान श्री कृष्ण का इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, के प्रत्येक युग युग में मैं जन्म लूंगा और जन्म लेकर क्या करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक युग में आते हैं, सतयुग में आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, कि सतयुग में ध्यान करके तपस्या करके मेरी प्राप्ति कर सकते हो। त्रेता में आते हैं भगवान श्री रामचंद्र के रूप में और धर्म की स्थापना करते हैं, दिखाते हैं कि बड़े बड़े यज्ञ करके, हवन यज्ञ इत्यादि करके मुझे प्राप्त किया जा सकता है, परम सुख को, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और द्वापर में स्वयं आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, अर्च विग्रह की सेवा करके मुझे प्राप्त किया जा सकता है। और कलयुग में, इसलिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु धर्म की स्थापना करने के लिए आए और इस कलयुग में कौन सा साधन दिए, संकीर्तन यज्ञ। सतयुग में ध्यान करने का साधन दिए, ध्यान करके आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। त्रेता में यज्ञ करने का अनुष्ठान दिए, यज्ञ करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। द्वापर में बड़े बड़े मंदिर बनाकर अर्च विग्रह की सेवा करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। और भगवान कलयुग में आकर धर्म की स्थापना करते हैं कि संकीर्तन यज्ञ द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम।
यह है दूसरा कारण, युग युग में भगवान आते हैं, तो इस युग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और चैतन्य महाप्रभु का इस संसार में आना, आने का तीसरा कारण है, आज से 500 करीबन 520 वर्ष पूर्व हमारे इस जगत की हालत, इस देश की हालत बहुत ही बिगड़ गई थी। और उस वक्त भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त अद्वैत आचार्य बहुत ही तीव्रता से प्रार्थना किए भगवान को, जैसे था वैसे रहने दीजिए। हरे कृष्णा, ठीक है, बहुत ही तीव्रता से प्रार्थना किए, हुंकार किए और समय को देखकर और अद्वैत आचार्य की हुंकार को सुनकर भगवान श्री कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा। वास्तव में अद्वैत आचार्य शिव जी और विष्णु जी के, भगवान विष्णु के अंश थे। और अद्वैत आचार्य ने प्रतिज्ञा की कि हे कृष्ण, अगर तुम इस संसार में नहीं आओगे तो मैं स्वयं शिव, रुद्र और विष्णु, इस संसार में जितने भी पाखंडी है, मैं चक्र के द्वारा सबका वध कर दूंगा। भगवान ने सोचा कि इस कलयुग में सब लोग पाखंडी है, सब लोग के हृदय में ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह भरा हुआ है और यह अद्वैत आचार्य मारने शुरू करेगा तो पूरी पृथ्वी ही खत्म हो जाएगी, इसलिए तुरंत मुझे जाना होगा। और अद्वैत आचार्य की उस हुंकार से भगवान का सिंहासन हिल गया और भगवान को यहां पर आना पड़ा। तो हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी के, उसने जैसे वर्णन किया है चैतन्य चरितामृत में जो वर्णन है, आज से करीबन 550 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में नदिया नाम के गांव में, मायापुर नाम, पश्चिम बंगाल में मुसलमान लोगों का राज्य आ गया था। कई सारे यौवन मुसलमान आ गए थे और सारे मुसलमानों ने हमारी हिंदू संस्कृति का नाश कर दिया था। भगवान को तो सब भूल गए थे, इतना ही नहीं, लोग मांसाहार करने लगे थे, मदिरा पान करने लगे थे, सभी प्रकार के पाप करने में लगे हुए थे। और ऐसे ही समय में हमारे पश्चिम बंगाल में मायापुर नाम के गांव में मायापुर नदिया एक विद्या का नगर था। इस मायापुर में बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग रहते थे और उस वक्त इस मायापुर को विद्या की नगरी कही जाती थी। जितने भी भारत के बड़े बड़े विद्वान और पंडित यह मायापुर में भरे हुए पड़े थे और अगर किसी को भी विद्या या ज्ञान प्राप्त करना होता था तो पश्चिम बंगाल में मायापुर में आकर उसे सर्टिफाइड करना पड़ता था। इतना बड़ा विद्या का नगर था मायापुर, लेकिन विद्या का सार लोग नहीं जानते थे। बड़े बड़े पंडित होते हुए भी, वेदों का अध्ययन करते हुए भी लोग वेदों का सार नहीं जानते थे। सारे वेद और शास्त्र जानते थे, ब्राह्मण इत्यादि, लेकिन सारे वेद और शास्त्र का सार है भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, साधु संग, साधु संग, साधु संग, सर्व शास्त्र कहे, सारे वेद और शास्त्र का सार है भगवान का नाम। लेकिन वहां के लोग यह नहीं जानते थे, वह कर्मकांड में फंसे हुए थे और पशु बलि देंगे तो यह मिलेगा, यह करेंगे तो यह मिलेगा, इसमें फंसे हुए थे। और उसमें भी मुसलमान का राज्य था, बहुत ही पाखंड चल रहा था और किसी भी, कोई भी एरिए में कहेंगे, मोहल्ले में कहेंगे, भक्ति नाम की चीज नहीं थी। अगर कुछ था तो वो कर्मकांड था या अपनी कुछ इच्छा प्राप्ति करने के लिए पशु बलि इत्यादि यह सब हो रहा था। ऐसे लोगों के बीच में भगवान के एक शुद्ध भक्त, जो मैं अभी कहा, अद्वैत आचार्य रहते थे। तब देखते हैं अद्वैत आचार्य ने क्या किया। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी यह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म की लीला का वर्णन करने के पहले कहते हैं, अनंत चैतन्य लीला शुद्र जीव हैया के वर्णित पारे ताहा विस्तार करिया। कहते हैं भगवान अनंत है और भगवान की लीला भी अनंत है, तो मेरे जैसा शूद्र, मेरे जैसा पतित भगवान की यह अनंत लीला को, यह शुद्ध लीला को कैसे वर्णन कर पाएगा। और वही हालत हमारी है, अर्थात मेरी, भगवान की विशुद्ध लीला का वर्णन मेरे जैसा जीव शूद्र कैसे कर सकता है। न योग्यता है, न भाव है न भाषा, और उसमें भी माया का प्रभाव। खैर, आप सबकी कृपा से, स्वयं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि सिद्धांत का सिद्धांत जो है बड़े सागर के समान है, विशाल सागर, और इस सिद्धांत के सागर को पार करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर किसी के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो जाए तो एक बालक भी इस सिद्धांत के सागर को पार कर सकता है। तो उसी चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद लेकर हम इस लीला को आगे बढ़ाएंगे। कविराज गोस्वामी कहते हैं, सूत्र करी गणे यदि आपने अनंत, सहस्त्र वदने ते हो नहीं पाए अंत। कहते अगर शेष नाग जिसकी सहस्त्र हजारों हजारों फेण है और अपने हजारों हजारों मुख द्वारा भी भगवान की लीला का वर्णन करने लगे, फिर भी वो भगवान की लीला को सूत्र नहीं कर पाएंगे, भगवान की लीला को कह नहीं पाएंगे। इतनी अनंत लीला है भगवान की। एक कवि ने तो लिखा है कि भगवान की लीला इतनी है कि सारी इस पृथ्वी में जितने भी पेड़ हैं, पौधे हैं, जितने भी बिल्डिंग हैं, उसे एक मशीन में डालिए और बहुत बड़ा लंबा कागज बनाइए और बड़े बड़े वृक्ष जो 500-500 साल तक जीते हैं, ऐसे वृक्ष की कलम बनाइए और समुद्र को शाही सिलाही बनाइए और उसको लिखने के लिए बड़े बड़े देवता जैसे समर्थ है गणपति जी, सरस्वती जी, वेद व्यास, बड़े बड़े ऋषि मुनि को बिठाइए, तो सारी पृथ्वी का कागज बनाया जाए और समुद्र को सिलाई बनाया जाए और बड़े बड़े पेड़ का कलम बनाया जाए और बड़े बड़े लोग भगवान की लीला को लिखने बैठे, फिर भी भगवान की लीला का 1% भी वर्णन वह नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम
राम हरे। तब आगे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, कौन वांछा पूर्ण लागी वजेंद्र कुमार, अवतीर्ण है ते मने करीला विचार। भगवान के धाम में बैठकर कृष्ण ने अपने मन ही मन में सोचा कि अब तो मुझे जाना होगा। आगे अवतरीला ये गुरु परिवार, संक्षेपे कहिए कहा ना पाए विस्तार। भगवान श्री कृष्ण जब इस संसार में आते हैं तो कुछ लीला करते हैं, और लीला करने के लिए हमारे साथ तो वो लीला करेंगे नहीं, क्योंकि हम में तो वो शुद्धता है नहीं। तो लीला करने के लिए भगवान वहां के अपने ही फैक्ट्री में जो बैठे हैं, अपने ही धाम में जो है, उसको भेजते हैं यहां पर, अपने पार्षदों को इस धराधाम पर भेजते हैं और उस अपने पार्षदों के साथ यहां पर लीला करते हैं। तो आगे अवतरीला ये गुरु परिवार, भगवान का जितना जो परिवार था, भगवान ने अपने सारे परिवारों को पहले भेज दिया, तुम सब जाओ। किस किस को भेजा कविराज गोस्वामी गिना रहे हैं, श्री सच्ची जगन्नाथ, श्री माधवपुरी, केशव भारती आर श्री ईश्वरपुरी। सबसे पहले सच्ची देवी को, जो कृष्ण लीला में यशोदा मैया थी, यशोदा मैया को अपने धाम में यशोदा मैया है और उसे इस कलयुग में सच्ची देवी के रूप में भेजा गया, और जगन्नाथ मिश्र जो नंद बाबा थे कृष्ण लीला में, श्री माधवपुरी, केशव भारती और ईश्वरपुरी, ये सभी लोगों को इस पृथ्वी पर भेज दिया। श्री अद्वैत आचार्य आर पंडित श्रीनिवास, आचार्य रत्न विद्या निधि ठाकुर हरिदास। अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित श्रीवास आचार्य रत्न विद्यानिधि हरिदास ठाकुर ये प्रत्येक लोग को अपने आने से पहले भगवान ने भेज दिया कि तुम जाओ और शुरू करो, सब प्लेटफॉर्म बनाकर रखो, मैं आ रहा हूं। और वास्तव में जितने भी लोग इस धराधाम पर आते हैं उसके भी आने के पीछे कुछ कारण होते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु आए तो नित्यानंद प्रभु साक्षात बलदेव जी हैं। तो बलदेव जी का इस संसार में आने का कारण यही है कि भगवान का आने से पहले यहां पर प्लेटफॉर्म बनाकर रख दे ताकि उसे सुविधा हो। इसलिए कृष्ण लीला में भी बलदेव जी का जन्म पहले हुआ। अद्वैत आचार्य शिव जी और विष्णु के अंश है, गदाधर पंडित राधा रानी के शक्ति तत्व है और श्रीवास नारद जी के अवतार है। और यहां पर है ठाकुर हरिदास और हरिदास स्वयं ब्रह्मा जी हैं। यह सभी लोगों का इस संसार में आने का, कलयुग में आने का भी कुछ कुछ कारण है। सभी का तो नहीं कहूंगा लेकिन ठाकुर हरिदास का इस कलयुग में आने का बहुत ही रम्य और अच्छा कारण है। और यह कारण को जानने के लिए हमें 5000 वर्ष पहले कृष्ण लीला में जाना होगा। भगवान श्री कृष्ण द्वापर में बहुत ही सुंदर लीला कर रहे थे, गैया को चराने जाते थे। तो एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने गोपबाल के साथ गैया चराने जंगल में गए और जंगल में जाकर गैया चरा रहे थे और उसमें भोजन लंच का समय हुआ। तो समय होते ही सभी लोग बैठ गए, भगवान कृष्ण के जितने भी गोपग्वाल सखा थे बैठ गए और अपने अपने जो घर से लाए थे बाहर निकाले और बाहर निकालकर एक दूसरे को खिलाने लगे, खुद खाते थे दूसरे को खिलाते थे। बहुत सुंदर यह कथा है। कृष्ण कहते थे मैया ने बहुत ही सुंदर छाछ बनाई है पियो, और कोई कहता था मैं बहुत सुंदर आचार लाया हूं कृष्ण लीजिए, कृष्ण को खिलाते थे पिलाते थे। कृष्ण अपना जूठा दूसरे को ग्वाल बालों को खिलाते थे और ग्वाल बाल अपना जूठन कृष्ण को खिलाते थे। और कुछ कुछ लोग कृष्ण की मस्ती मजाक भी किया करते थे। कृष्ण को कहते थे कृष्ण देख बहुत ही सुंदर में माँ ने मुझे दिया है, जरा देख बहुत ही सुंदर है। तो कृष्ण के मुख के पास लाते थे, कृष्ण जैसे ही खाने के लिए जाते थे वो खींच लेते थे और सब लोग हंसने लगते थे। इस प्रकार की लीला, जूठन खाना और खिलाना। उस वक्त ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमारे प्रभु इस द्वापर में आए हैं, इसका कुछ कर दीजिए जल्दी। हरे कृष्णा ब्रह्मा जी ने सोचा हमारे प्रभु इस द्वापर युग में कृष्ण लीला कर रहे हैं तो जाकर जरा मैं देखूं। ब्रह्मा जी आए देखे तो भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों का जूठा खा रहे थे, खिला रहे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा यह कृष्ण यह भगवान हो ही नहीं सकता क्योंकि भगवान कभी किसी का जूठा नहीं खा सकता और वो भी खाने का कोई तरीका नहीं है, ढंग नहीं है, यह कृष्ण नहीं हो सकता। हरे कृष्णा, जल्दी जो भी है जल्दी कीजिए।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
अब सब लोग टीवी के सामने देखिए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं जाकर देखूं कि हमारे प्रभु कैसी लीला कर रहे हैं। तो देखा कृष्ण की ऐसी लीला को देखकर विधि विधान बनाने वाले विधाता भी भ्रम में पड़ गए कि यह भगवान नहीं हो सकते। जिस ब्रह्मा को भगवान विष्णु ने ज्ञान दिया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, भगवान विष्णु ने साक्षात प्रकट जिस ब्रह्मा को ज्ञान दिया है हृदय में डायरेक्ट, वह ब्रह्मा भी भ्रम में पड़ गया कि यह कृष्ण नहीं हो सकता। तो इस संसार का साधारण जीव भ्रम में पड़े यह कोई बड़ी बात नहीं है। संसार के लोग कहे कि ये कृष्ण भगवान नहीं है और कृष्ण तो हमारी तरह आए और चले गए, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी जिससे भगवान से ज्ञान मिला था यह भी भ्रम में पड़ गए। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सबको भ्रम में पड़ना चाहिए। देखिए ब्रह्मा जी की क्या हालत होती है। ब्रह्मा जी भ्रम में पड़ गए, ब्रह्मा जी ने सोचा अब मैं परीक्षा लूंगा कि यह भगवान है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले जितने भी बछड़े और गाय थे उसको चुरा कर लेकर गए और कहां पर छुपाए, ब्रह्मलोक में जाए गए, छुपा कर वापस आए और वापस आने के बाद कृष्ण ने कहा कि मैं उस बछड़े को ढूंढ कर आता हूं। तो उतने में कृष्ण बाहर गए, ग्वाल बाल से दूर गए, तो ब्रह्मा जी ये सारे ग्वाल बाल को चुरा कर ब्रह्मलोक में लेकर चले गए और कृष्ण अकेले रह गए। कृष्ण ने देखा यह मेरे ही बच्चे का काम है। कृष्ण तुरंत समझ गए और तुरंत अपना ऐश्वर्य प्रकट किया। जितने भी गैया थी, जितने भी ग्वाल बाल थे, कृष्ण ने अपने ही शरीर से ऐश्वर्य प्रकट करके वह जितने भी एज इट इज जो ग्वाल बाल लेकर गए थे ब्रह्मा जी, वैसे ग्वाल बाल यहां पर प्रकट कर दिए और वैसे गाय बछड़े इत्यादि प्रकट कर दिए। यहां से ब्रह्मलोक बहुत दूर है और ब्रह्मलोक से यहां पर आने के लिए 1 साल जाता है और ब्रह्मा जी 2 बार, एक तो छोड़ने गए और वापस आए, 2 साल बीत गया यहां पर पृथ्वी पर और 2 साल तक भगवान ने जो अपने शरीर से प्रकट किया था वह लोग अपने घर में रहे, गए खाए पिए। और ब्रह्मा जी ने जब आकर देखा तो सोचने लगे जिस लोगों को मैं वहां पर छोड़कर आया हूं वे लोग यहां पर भी हैं। तब ब्रह्मा जी को बुद्धि आई कि वास्तव में यही कृष्ण है, कृष्ण के अलावा यह कार्य और कोई नहीं कर सकता, लेकिन अब क्या करूं, इतना बड़ा अपराध मुझसे हो गया है कि मैं स्वयं जो भगवान इस दुनिया वालों की परीक्षा लेता है उसकी परीक्षा में लिया। ब्रह्मा जी बहुत बड़ा अपराध कर दिए और मन में एहसास हो रहा है कि मुझसे अपराध हो गया है, इसलिए ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगने जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत ब्रह्मा जी का स्वरूप बहुत बड़ा है और इतना बड़ा पहाड़ जैसा ब्रह्मा एक छोटे से कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर, 4 सिर है और इतना बड़ा पहाड़ जैसा शरीर है और छोटे से कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं और बहुत ही सुंदर 20 श्लोक में प्रार्थना करते हैं। श्रीमद् भागवत में श्लोक है, नौमीयते भ्रवपुषेत विडम्बराय गुंजा वसन परिपिच्छस लसन मुखाय वन्यास्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मा श्रेय मृदुपते पशुपंग जाय। बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोकों से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, लेकिन कृष्ण ने ब्रह्मा जी के सामने तक नहीं देखा। वैसे तो कृष्ण का अपराध इंद्र ने भी किया था, लेकिन इंद्र ने जब क्षमा याचना की तब भगवान तुरंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि इंद्र ने यह बारिश करके सामर्थ तक मेघ को गिराकर व्रज के सारे लोगों को कृष्ण के पास ला दिया था। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा मैं कितने कितने लोगों के घर पे जाऊंगा और सब मेरे भक्तों का दर्शन करूंगा, इंद्र की कृपा से यह सब लोग मेरे सामने खड़े हैं और मैं दर्शन कर रहा हूं। लेकिन ब्रह्मा जी ने कृष्ण के भक्तों को, ग्वाल बालों को कृष्ण से अलग कर दिया था, इसलिए यह बहुत बड़ा अपराध था, अक्षम्य अपराध था, क्षमा करने वाला यह अपराध नहीं था। बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना किए, यहां तक ब्रह्मा जी ने कह दिया कि हे कृष्ण, जैसे एक छोटा बच्चा होता है और वो बच्चा अपनी माँ के गोद में दूध पीता है और वो छोटा सा बच्चा अपनी दूध पिलाने वाली माँ को कभी कभी लात से मार देता है, तो लात से मारने पर, बच्चे के लात से मारने पर क्या उसकी माँ उसे फेंक देती है, पटक देती है या छोड़ देती है? ठीक उसी प्रकार कृष्ण, हम तुम्हारे पुत्र हैं, हम तुम्हारी संतान हैं, मुझसे कोई अपराध भी हो जाए तो क्षमा करना। तत्पश्चात यह श्लोक के बाद, यह स्तुति के बाद भगवान ने क्षमा कर दिया। लेकिन वही ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझसे द्वापर युग में बहुत बड़ा अपराध हो गया था भगवान का, इसलिए मैं कलयुग में जाऊंगा और उसी भगवान के नाम का जप करूंगा। और इतना जप किया कि स्वयं भगवान ने उसे नामाचार्य की पदवी दे दी। वही ब्रह्मा जी इस कलयुग में हरिदास ठाकुर के रूप में आए, एक म्लेच्छ यौवन परिवार में। तो भगवान के पार्षदों के भी यहां धरांधाम पर आने के लिए कुछ कारण होते। तो इस प्रकार जय श्री सच्ची जगन्नाथ श्री माधव पुरी केशव भारती आर श्री ईश्वर पुरी अद्वैत आचार्य यार आर पंडित श्रीनिवास आचार्य रत्न विद्या निधि ठाकुर हरिदास। ये सब लोग इस धराधाम पर आ गए और अपनी अपनी पोजीशन ले लिए। अब कथा आगे बढ़ा रहे हैं। श्रीहट निवासी श्री उपेंद्र मिश्र नाम वैष्णव पंडित धनी सदगुण प्रधान, हट नाम के जिले में, उस मायापुर में, उस पश्चिम बंगाल में हट नाम के जिले में एक उपेंद्र मिश्र नाम के वैष्णव रहते थे, ब्राह्मण रहते थे और बहुत ही अच्छे गुण वाले वह थे और उसके 7 पुत्र थे। सप्त मिश्र तारे पुत्र सप्त ऋषिश्वर कंसारी परमानंद पद्मनाभ सर्वेश्वर जगन्नाथ जनार्दन त्रैलोक्य नाथ नदी याते गंगावास कैल जगन्नाथ। उस उपेंद्र मिश्र के 7 पुत्र थे और 7ों पुत्र साधु स्वभाव के थे, ऋषिश्वर थे और 7ों के नाम दिए गए हैं, कंसारी परमानंद पद्मनाभ सर्वेश्वर जगन्नाथ जनार्दन त्रैलोक्यनाथ इत्यादि। और उनमें से जो 6ठे पुत्र थे जिसका नाम था जगन्नाथ मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रवर पदवी पुरंदर नंद वसुदेव रूप सदगुण सागर। यह जो जगन्नाथ मिश्र थे उसने पुरंदर नाम की पदवी प्राप्त कर ली थी अपनी विद्वत्ता से, इतने विद्वान थे उसे पुरंदर की पदवी मिली थी। और वह जगन्नाथ मिश्र नदिया गांव में रहते थे। तार पत्नी सच्ची नाम प्रतिव्रता स्त्री यार पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती, नीलांबर चक्रवर्ती की एक पुत्री थी जिसका विवाह यह जगन्नाथ मिश्रा से हुआ था, जगन्नाथ मिश्रा की यह पत्नी थी। राड देश जन्मिला ठाकुर नित्यानंद गंगादास पंडित गुप्त मुरारी मुकुंद। राड देश का अर्थ होता है जिस देश में गंगा न हो, जिस गांव में गंगा का प्रवाह न हो, इसे राड देश कहते हैं। तो राड देश में ठाकुर नित्यानंद गंगादास पंडित गुप्त मुरारी मुकुंद इत्यादि ने जन्म ले लिया था। असंख्य भक्तेर कराईला अवतार शिष्य अवतीर्ण हेला वजेंद्र कुमार प्रभुर आविर्भाव पूर्वे यत वैष्णव गण अद्वैत आचार्य स्थाने करे न गमन। जैसे मैंने कहा उस वक्त बहुत ही पाखंड चल रहा था, अत्याचार चल रहा था म्लेच्छ यौवन के द्वारा। इसलिए उस नदिया गांव में जो कुछ 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 कृष्ण के भक्त थे वह लोग अद्वैत आचार्य के घर जाते थे, और अद्वैत आचार्य भगवान के महान भक्त थे और वह भागवतम पर प्रवचन करते थे। तो कुछ कुछ भक्त उस नदिया गांव में जो थे वह अद्वैत आचार्य के घर जाते थे और उस घर पे जाकर प्रवचन सुनते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे। गीता भागवत कहे आचार्य गोसाई, ज्ञान कर्म नंदी करे भक्ति र बढ़ाए। भागवत और गीता का पाठ करते थे अद्वैत आचार्य। और अद्वैत आचार्य के जीवन में आया है, जब तक गीता और भागवत पर प्रवचन करते और वो प्रवचन को कैसे भी करके भक्ति के ऊपर, भगवान की भक्ति करनी चाहिए वहां पर लाकर एंड करते थे। सर्व शास्त्र कहे कृष्ण भक्ति र व्याख्यान, ज्ञान योग तपो धर्म नहीं मान्यान। सर्व शास्त्र का सार यही है कृष्ण की भक्ति। तो अद्वैत आचार्य सभी शास्त्रों को कृष्ण की भक्ति के प्लेटफॉर्म पर लाकर छोड़ते थे। तार संगे आनंद करे वैष्णवेर गण, कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन। और सब लोग अद्वैत आचार्य के साथ कृष्ण कीर्तन करते थे, कथा करते थे और आनंद लेते थे। किंतु सर्व लोक देखी कृष्ण बहिर्मुख, विषय निमग्न लोक देखी पाए दुख। लेकिन ये कुछ भक्त जो अद्वैत आचार्य के साथ थे वह और दूसरों के दुख को देखकर जो कृष्ण से बहिर्मुख थे और जो जीवन में दुखी थे, ऐसे लोगों को देखकर बहुत ही दुखी होते थे। वास्तव में यह भक्त का स्वभाव होता है, जब किसी को कृष्ण के बहिर्मुख देखता है, कृष्ण के विमुख देखता है, और ऐसा जीव कृष्ण के विमुख जीव दुखी होगा। निकटस्थ माया तारे कृष्ण बहिर्मुख भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। कृष्ण से दूर होकर जो भोग और वांछा में पड़ा रहता है उसके पीछे माया लगती है, और माया समय के द्वारा, काल के द्वारा, किसी लोगों के द्वारा थप्पड़ मारते रहती है, दुखी करती रहती है, और ऐसे दुखी लोगों को देखकर भगवान के भक्त दुखी होते हैं। क्योंकि भगवान के भक्त जानते हैं ये व्यक्ति क्यों दुखी है, और वह दुखी व्यक्ति को सुखी करने का इलाज भी जानते हैं, इसलिए वह दुखी होते हैं। जैसे एक डॉक्टर जानता है कि इस छोटे से बच्चे को क्यों पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर जानता है इस छोटे से बच्चे को क्यों दर्द हो रहा है पेट में, मैं एक इंजेक्शन दूंगा और उसे सारा दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन वह बच्चा कह दे मुझे इंजेक्शन नहीं लेना है, कल्पना करो वह डॉक्टर कितना दुखी होगा। ठीक उसी प्रकार भगवान के भक्त दुखी होते हैं कृष्ण से बहिर्मुख जीव को देखकर। तो यहां पर अद्वैत आचार्य की टीम दुखी हो रही थी वहां के दुखी जनों को देखकर। लोकेर निस्तार हेतु करे न चिंतन, केमते सब लोकेर हैबे तारण। सब लोग सोचते थे, अद्वैत आचार्य सोचने लगे कि यह लोग का तारण कैसे होगा, यह लोग का उद्धार कैसे होगा। कृष्ण अवतरी करेन भक्तेर विस्तार, तबे त सकल लोकेर हैबे निस्तार। अब तो एक ही रास्ता बचा है, जब तक कृष्ण भक्त बनकर इस संसार में नहीं आएंगे और नहीं सिखाएंगे किसी को भक्ति, तब तक ये लोग मानने वाले नहीं है। इसलिए कृष्ण को भक्त बनकर यहां पर आना होगा। कृष्ण अवतारिते आचार्य प्रतिज्ञा करिया, कृष्ण रूप पूजा करे तुलसी गंगा जल दिया। और कृष्ण का अवतार कराने के लिए आचार्य, अद्वैत आचार्य प्रतिदिन गंगा जल और तुलसी दल को लेकर भगवान के चरणों में अर्पण करते थे। क्योंकि अद्वैत आचार्य जानते थे, शास्त्र में लिखा है कि भगवान तुलसी दल देने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कृष्ण गीता में कहे हैं कि अगर मुझे प्रसन्न करना है तो पत्र पुष्प फलम और तोयम, शराब नहीं, मांस नहीं, कांदा नहीं, लहसुन नहीं, और बड़े बड़े व्यंजन पंजाबी पिज्जा पाव भाजी भी नहीं चाहिए। पत्र पुष्प थोड़ा सा फूल अर्पण कर दीजिए, फल अर्पण कर दीजिए, फलम तोयम, तोयम का अर्थ होता है पानी, इतना कोई भक्ति भाव से मुझे अर्पण करता है मैं प्रसन्न हो जाता हूं। 14 भुवन के नाथ जो हम सब के नाथ है जगन्नाथ, इतने बड़े व्यक्ति होकर सिर्फ इतनी छोटी सी चीज को लेकर प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यहां पर इस संसार में एक झोपड़े में रहने वाले को भी पूछा जाए कि मैं तुम्हें थोड़ा पानी देता हूं और एक केला देता हूं, तुम खुश हो जाओगे? नहीं होगा। भगवान परम कृपालु है, थोड़े से मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अद्वैत आचार्य यह जानते थे, इसलिए उन्होंने तुलसी दल भगवान को अर्पण किया और प्रार्थना की, कृपया करके आप जल्दी अवतार लीजिए। कृष्णेर आहवान करे सघन हुंकार, हुंकारी आकृष्ट हैला वजेंद्र कुमार। अद्वैत आचार्य की प्रतिदिन यह क्रम होता था कि रोज भगवान के चरणों में चंदन गंगाजल और यह तुलसी अर्पित करते थे। लेकिन एक दिन अद्वैत आचार्य से रहा नहीं गया। अद्वैत आचार्य कहने लगे, अब बहुत हो गया, अभी संसार की हालत बिगड़ती जा रही है। और अद्वैत आचार्य ने कहा कि अगर तुम नहीं आते हो तो मैं सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर सभी लोगों का वध कर दूंगा। और हुंकार कर देता है, जोर जोर से चिल्लाने लगे, कृष्ण कृष्ण तुम आओ यहां पर। और इस आवाज से, इस अद्वैत आचार्य की हुंकार से, हुंकारे आकृष्ट केला वजेंद्र कुमार, वह वजेंद्र कुमार वैकुंठ में बैठे हुए कृष्ण का सिंहासन डोलने लगा। तो और कृष्ण ने सोच लिया, अब मुझे जाना होगा। अपत्य विरहे मिश्र दुखी हैल मन, पुत्र लागी आराध हिल विष्णु चरण। भगवान श्री कृष्ण ने ठान लिया कि अब मुझे जाना है। अब कैसे आए भगवान कृष्ण यहां पर, अब वह कथा आ रही है। अत्यंत विरह मिश्र दुखी हैल मन, पुत्र लागी आराधिल विष्णु चरण। जगन्नाथ मिश्र जिसने पुरंदर पदवी प्राप्त की थी, जो नंद महाराज के अवतार थे, उसके पत्नी सची, उसकी पत्नी का नाम था सची माता, और सची माता के गर्भ से कई सारी लड़कियों का जन्म होकर मर चुकी थी, जन्म होते ही मर जाती थी। इसलिए जगन्नाथ मिश्र बहुत ही दुखी थे। एक तो यह बात का दुख था, मुझे एक भी पुत्र नहीं है, और यह दुख था कि क्रमशः इतनी सारी पुत्रियों ने जन्म लेकर मर गई। तबे पुत्र जन्मिला विश्वरूप नाम, महागुणवान तेह बल देवधाम। लेकिन उस वक्त शची माता के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, और वह कौन था? साक्षात बलदेव जी थे, बलदेव के अवतार थे। बहुत ही सुंदर वह पुत्र था, और उसका रूप भी बहुत सुंदर था, इसलिए उसका नाम विश्व रूप रखा गया। बलदेव प्रकाश परम व्योमे संकर्षण, तेहे विश्वेर उपादान निमित्त कारण। वही शंकरषण, वही बलदेव जी सची माता के गर्भ से विश्व रूप के रूप में प्रकट हुए। ताहा बई विश्वे किचु नाही देखी आर, अतएव विश्व रूप नाम ये ताहार। अतएव प्रभु तारे बले बड़ भाई, कृष्ण बलराम दुई चैतन्य निताई। वही बलराम पुत्र पाया दंपति हेले आनंदित मन विशेष सेवन करे गोविंद चरण। और जगन्नाथ मिश्र यह विश्वरूप नाम के पुत्र को पाकर बहुत ही सुखी हो गए, आनंदित हो गए। चौदह शत छय शाके शेष माधव मासे जगन्नाथ सचिरे देहे कृष्ण प्रवेशे। अब देखिए, अब भगवान कृष्ण आ रहे हैं, लेकिन किस प्रकार आ रहे हैं वह देखिए। वास्तव में भगवान जब इस धराधाम पर आते हैं तब हमारी तरह नहीं आते हैं। हमें तो 9 महीने तक इस माँ के पेट के थैले में रहना पड़ता है, जहां पर गंदी हवा पसार होकर निकलती है। भगवान को 9 महीने तक घर पे नहीं रहना पड़ता। और भगवान का इस संसार में आना दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान का जन्म दिव्य है। तो यहां पर कहा गया है 1400, शत का अर्थ होता है 1400 शाके अर्थात 1406 के शेष माघ में जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण सची माता के देह में प्रवेश किए 1406 में। अब यहां पर प्रश्न होता है कि भगवान का जन्म 1407 फाल्गुन महीने में हुआ, और यहां पर कह रहे हैं कि 1406 के माघ महीने में भगवान कृष्ण गर्भ में आए। तो 1406 माघ और 1407 फाल्गुन के बीच में 13 महीने का डिस्टेंस है, और साधारणतया 9 महीने में जन्म होता है। अब देखिए, मिश्र कहे सची स्थाने देखी आन रीत ज्योतिर्मय देह गेह लक्ष्मी अधिष्ठित यहां तहां सर्वलोक करे ये सम्मान घरे पाठा ही देह धन वस्त्र दान। जगन्नाथ मिश्र ने देखा कि सची देवी के मुख पर बहुत ही सुंदर तेज है। तेज क्यों था? क्योंकि साक्षात भगवान आ चुके थे। और भगवान जैसे ही सची देवी के गर्भ में आए, जगन्नाथ मिश्र को लोग दान देने लगे, उसकी समाज में बड़ाई होने लगी। सची कहे मुही देखो आकाश ऊपर दिव्य मूर्ति लोग सब ये न स्तुति करे। चूंकि सची माता के घर में साक्षात भगवान कृष्ण आ गए थे, और सारे देवतागण यह राह देखकर बैठते हैं कि कब भगवान इस धराधाम पर आएंगे, और साक्षात देवतागण भी भगवान का दर्शन करने के लिए यहां पर आते हैं, और सारे देवतागण आकाश में खड़े थे। तब सची देवी ने कहा कि पतिदेव यहां पर आइए। दिखाया सची कहे मुई देखो आकाश ऊपर, आकाश में देखिए दिव्य मूर्ति लोग सब ये न स्तुति करे, सभी देवता स्तुति कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। जगन्नाथ मिश्र कहे स्वप्न ये देखिल ज्योतिर्मय धाम मोय हृदय प्रसिल। जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि हाँ, वास्तव में मैंने कल रात को एक स्वप्न देखा। क्या था स्वप्न में? स्वप्न देखा कि एक ज्योति, एक प्रकाशमय, एक प्रकाशमय वस्तु मेरे हृदय में प्रवेश कर रही है। एक ज्योतिर्मय धाम, एक प्रकाश मेरे हृदय में आ गया है। आमार हृदय हेते गेला तुमार हृदय हे न मुझी जन्मी बेने कौन महाशय। और मैंने सपने देखा कि वह बहुत बड़ा प्रकाश मेरे हृदय में आया, और मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय में चला गया, और तुम्हारे हृदय में जैसे ही चला गया तुम्हें गर्भ आ गया, और अब न जाने कौन तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा। केन बूझी न जाने जन्मी बेन कौन महाशय, कौन महाशय जन्म लेने वाला है। एत बली दुही रहे हर्षित हैया शाल ग्राम सेवा करे विशेष करिया। और यह दोनों बात करके दोनों हर्षित हुए, दोनों सुखी हुए। वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत चमत्कार हो रहा है। और यह होते हुए यह जब हुआ तब दोनों की श्रद्धा भगवान में और बढ़ गई, और वह एक शालिग्राम शिला रखते थे और दोनों शालिग्राम की विशेष प्रकार से सेवा करने लगे। एक सिद्धांत आ रहा है और अमित प्रभु ने कहा है कि सिद्धांत यहां पर कहना चाहिए, और इस प्रकार से सिद्धांत कहने लगा तो जन्म में ही आज का दिन हो जाएगा। खैर, प्रभु जी का आग्रह है, बहुत ही सुंदर सिद्धांत है। जब सची के गर्भ में यह प्रकाश आया तब वह भगवान की विशेषण रूप से सेवा करने लगी। वास्तव में प्रत्येक गृहस्थ को जब संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तब विशेष रूप से भगवान की सेवा करनी चाहिए और विशेष रूप से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर इस प्रकार से नहीं करेंगे तो आजकल के पुत्र आप देख ही रहे हैं, भगवान में मन रखते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए अगर कोई गर्भाधान करता है या संतान प्राप्ति करता है तो वास्तव में उसका संतान, उसका पुत्र भक्त पैदा होता है और अच्छे संस्कार वाला होता है। लेकिन हमारे जीवन में तो वह देखा ही नहीं जाता। इस संसार में जितने भी लड़के हैं गलत आचरण कर रहे हैं या गलत गलत काम कर रहे हैं, वास्तव में वह बच्चों का दोष नहीं है। हमें वह बच्चों को दोष नहीं देना चाहिए, वास्तव में दोष हमारा है, माता पिता का दोष है, क्योंकि हमने उसे संस्कार नहीं दिया। और सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, और वही होता है सबसे बड़ा संस्कार, और किसी ने यह ठीक से नहीं किया तो वास्तव में बच्चे ऐसे ही निकलेंगे। क्योंकि कहा गया है, बहुत ही कटु सिद्धांत है, कि काम वासना से पैदा किया हुआ बच्चा कामी ही होगा, वह कभी शुद्ध भक्त नहीं होगा। और भक्ति भाव से भगवान की पूजा सेवा करके जो पुत्र उत्पन्न करेंगे वो भक्त ही होगा। जन्म होने के बाद कैसे भी संस्कार दो, कुछ भी करो, जब तक पहले से भक्ति नहीं करोगे तब तक भक्त नहीं निकलेंगे। आगे चलकर चोर बनेंगे, किसी को लूटेंगे या जो कुछ भी होगा, काम ही होंगे। इसलिए जैसे शालिग्राम सेवा करे विशेष करिए, मैं बहुत इस पर नहीं कहना चाहता हूं, शालिग्राम की सेवा करने लगे जैसे पता चला हमारे घर में यह आ गया है, ये भी कह रहा है बस प्रभु बंद कीजिए अभी। हेते हेते हेल गर्भ त्रयोदश मास तथापि भूमिष्ठ नहे मिश्रेल हेल तास। और इस प्रकार गर्भ के रहते रहते 13 मास गुजर गए, 13 महीना हो गए, 9 महीना, 10 महीना, 11, 12, 13। अब जगन्नाथ मिश्र बहुत ही टेंशन में आ गए, बहुत ही दुखी हो गए, ये सुखदेव गोस्वामी की तो तरह तो नहीं होगा 12-12 साल तक। मिश्र हेल त्रास, मिश्र को, जगन्नाथ मिश्र को त्रास हो गया कि अब क्या होगा, 13 महीना हो गया इसको गर्भ में आए। नीलांबर चक्रवर्ती कहिल गणिया एई मासे पुत्र हवे शुभ क्षण पाया। सची माता के जो पिता थे जिसका नाम था नीलांबर चक्रवर्ती, वे एक बहुत ही बड़े विद्वान थे और ज्योतिषी थे। तो सची माता के पिता ने कहा, कोई डरने की बात नहीं है, यही महीने की शुभ घड़ी में इसका जन्म हो जाएगा, सांत्वना दी। तब 14 शत 7 शके मास ये फाल्गुन पौणे मास संध्या काले है ये शुभ क्षण। इस महीने में यह शुभ क्षण थी 14 शत 1407 फाल्गुन, हमारे अंग्रेजी में मार्च या अप्रैल होता है, 1407 मार्च में, अप्रैल में संध्या के बिल्कुल 7 बजे थे। सिंह राशि सिंह लग्न उच्च ग्रह गण षड वर्ग अष्ट वर्ग सर्व सुलक्षण। सारे नक्षत्र बिल्कुल ठीक हो गए थे, सिंह राशि हो गई थी, बहुत ही सुंदर नक्षत्र और तारे हो गए थे। सकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन, सकलंक चंद्र आर कौन प्रयोजन। मानो ऐसा हो रहा था कि अब ऐसा गौर चंद्र प्रकट होने वाला है, और गौर चंद्र जब प्रकट होने वाला है तब यह जो चंद्र है, जो दाग वाला चंद्र है, उसकी क्या जरूरत है। एत जानी राहु केल चंद्र ग्रहण, कृष्ण कृष्ण हरि नामे भासे त्रिभुवन। यह जानकर राहु ने चंद्र पर ग्रहण कर दिया, और ग्रहण होने के कारण जय जय ध्वनि हेल सकल भुवन, चमत्कार हेला लोक भावे मने मन। चंद्र ग्रहण हो गया और उस नदिया में जितने भी अच्छे लोग थे, बुरे लोग थे, सभी लोग चंद्र ग्रहण के डर से, सभी लोग यह चंद्र ग्रहण से हम अपवित्र हो जाएंगे, तो यह डर से सब लोग गंगा में स्नान करने चले गए। और गंगा में स्नान करके हरी 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 बोल हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
सब लोग हरी हरी करने लगे। जो अद्वैत आचार्य की जो टीम थी वो तो महामंत्र नहीं रहे थे, लेकिन जो ज्ञानी थे, जो ज्ञान मार्ग में थे, कर्मकांड में थे, वह भी यह भरोसा रखते हैं कि ग्रहण है। ग्रहण जब होता है तब सब लोग पवित्रता अपवित्रता देखते हैं, तो ग्रहण के कारण सारे लोग हरी हरी भगवान का नाम लेने लगे। और यह देखकर जो मुसलमान थे, जो यौवन थे, वह आश्चर्य से कहने लगे, आज कौन सी क्या बात हो गई कि यह लोग हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे
राम। सभी जाति पाति मुसलमान म्लेच्छ यौवन ब्राह्मण सभी लोग हरी 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 बोल करने लगे। जगत भरिया लोक बोले हरी हरी, सही क्षण गौर कृष्ण भूमे अवतरी। और उसी क्षण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु की निताय गौर प्रेमानंदे, हरी हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल
हरी बोल
हरी बोल
हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल
निताय गौरांगो निताय गौरांगो निताय गौरांगो निताय गौरांगो Nitai Gorango, Nitai Gorango, Nitai Gorango, Nitai Gorango, Nitai Gorango, Nitai Gorango, Gorango, Nitai Gorango, Gorahari, जय जति नंदन 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 गौरहरि जय जति नंदन गौरहरि गौर 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 गौरहरि सचि माता प्राण धन गौरहरि सचि माता प्राण धन गौरहरि
जय बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय बोल हरि 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 बोल जय बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय बोल हरि
तो इस प्रकार से मधुर ध्वनि से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का इस संसार में प्राकट्य हुआ। बहुत ही सुंदर घड़ी थी। चैतन्य महाप्रभु ने दिखा दिया कि वह जो कार्य करने के लिए आ रहे हैं उसे आने के पहले ही वह कार्य करना प्रारंभ कर दिए। चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करने के लिए आए थे, लेकिन वह आने से पहले ही सब लोग हरी बोल करने लगे। और उस वक्त उस महान घड़ी को देखकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का इस धराधाम पर प्राकट्य हुआ। प्रसन्न हरिल सब जगतेर मन, हरि बोल हिंदू के हास्य करे यवन। सब लोग प्रसन्न हो गए। हरि बोल नारी गण सही हुला हुली, स्वर्गे वादे नित्य करे देव कुतूहली। सभी नारी और पुरुष हरि बोल करते थे, और देवता गण आ गए थे अपने वाजिंत्र गंधर्व यक्ष किन्नर सब लोग आकर हरि बोल की इस प्रकार की जैसे हमने ध्वनि की इस प्रकार से हो रही थी। प्रसन्न हैल दश दिक प्रसन्न नदी जल, स्थावर जंगम हैले आनंद विवन। दसों दिशाएं प्रसन्न हो गई और सारे स्थावर और जंगम पेड़ पौधे पत्थर सब लोग आनंदित हो गए। तो इस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जन्म पर सभी लोगों को आनंद दिया और सारे लोग आनंदित हो गए। और जन्म लेकर ही अपनी लीला प्रारंभ कर दी। जन्म लेने से पहले ही अपनी लीला प्रारंभ हो गई थी। सब लोग हरि बोल कर रहे थे। जन्म लेते ही लेने के बाद भी बहुत कुछ अपनी लीला की, लेकिन लीला कहने के पहले, अब लीला आएंगी बहुत सारी, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक सिद्धांत बताना चाहता हूं कि वास्तव में हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। हम इसलिए भाग्यशाली हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म, चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण आज से 520 साल पहले ही यहां पर आए थे। बहुत ज्यादा समय नहीं, 520 बहुत ही कम समय। और जिस वक्त भगवान स्वयं इस धराधाम पर आते हैं उसे सुवर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन युग कहा जाता है, जब स्वयं भगवान आते हैं। वास्तव में हर वक्त भगवान स्वयं नहीं आते हैं। भगवान साक्षात कृष्ण गोलोक धाम में रहते हैं और उसके स्वरूप है बलदेव जी, और बलदेव जी से संकर्षण से विष्णु, और विष्णु से सारे अवतार निकलते हैं, राम नरसिंह वामन वराह जो भी है विष्णु से निकलते हैं। लेकिन कभी कभी वह गोलोक में रहने वाले कृष्ण साक्षात इस धराधाम पर आते हैं, और वही कृष्ण साक्षात सिर्फ 500 साल पहले यहां पर आ गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। हम कितने भाग्यशाली हैं। वास्तव में हम देखने जाए तो हम कितने भाग्यशाली हैं इसका अंदाजा हम भी नहीं लगा सकते। जैसे यह कलयुग की उम्र है 432,000 वर्ष। अब आप गिनती करते जाइए, जिसके पास कैलकुलेटर है हाथ में ले लीजिए। कलयुग की उम्र है, आवाज नहीं आना चाहिए, 432,000, और बिल्कुल इससे दुगुना द्वापर युग है, 864,000। यह हिसाब लगाने में कल मुझे 1.5 घंटा गया। खैर मैं हिसाब करके ही लाया हूं, रहने दीजिए। कलयुग 432,000 वर्ष का है और द्वापर युग 864,000, और कलयुग से तिगुना है त्रेता युग, 12,96,000 और उससे चौगुना है, चार गुना है सतयुग, 17,28,000। ठीक है, तो टोटल मिलाकर 43,20,000 होते हैं, 43,20,000। 43,20,000 वर्ष, इसे एक चतुर्युग कहा जाता है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये चार युग को मिलाकर एक चतुर्युग कहा जाता है। ऐसे 1,000 चतुर्युग होते हैं तब ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है, अर्थात 43,20,000 इंटू 1,000 गुणाकार, 43,20,000 गुणिया 1,000 ब्रह्मा जी ने 12 कलाक। मैं हिसाब किया हूं, इसमें नहीं आएगा। 4,32,00,000,000 वर्ष जब हमारे होंगे तब ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। 4,32,00,000,000 वर्ष, ठीक है। साथ में यह भी ध्यान में रखिए कि हमारी उम्र 100 साल की है और इसमें हम चार अरब खरबों बार आ जाएंगे, जन्म लेके मर के। तो 4,32,00,000,000 वर्ष का ब्रह्मा जी का 12 घंटा है, आधा दिन है। वैसे ब्रह्मा इंटू टू ब्रह्मा जी का पूरा दिन हो जाए, अब वो कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है। 4,32,00,000,000, हाँ 864,00,000,000, 8,64,00,000,000, 8,64,00,000,000 का एक दिन है, और उस एक दिन में भगवान श्री कृष्ण स्वयं 1 बार आते हैं। कितना? 8,64,00,000,000 वर्ष में भगवान कृष्ण 1 बार आते हैं, ठीक है। तो वो जो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 1 बार आए, उसको गए कितना समय हुआ? 520। आगे ऐसा समय निकल जाएगा तब कहेंगे कि हम अभी ऐसे कहते हैं कि 520 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए, और आज सब कुछ हमें दिखने में, योगपीठ है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, सब कुछ है, लेकिन तब तो ऐसा कहेंगे कि हमारे कुटुंब में इतने करोड़ वर्ष पहले नटनागर प्रभु थे और वह योगपीठ में जाकर आए। आश्चर्य मानेंगे, हम तो ऐसे कहते 520 वर्ष पहले, लेकिन ऐसा समय आएगा लोग कहेंगे लाखों वर्ष पहले भगवान आए थे, करोड़ों वर्ष पहले भगवान आए थे, अरबों वर्ष पहले, 8,000,000,000। लेकिन देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं, भगवान गए सिर्फ 520 साल हुए, अभी अभी मामूली, बहुत ही कम समय है भगवान गए। और कृष्ण भी गए 5,500 वर्ष हुआ। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनमंत्र होते हैं, और उस 14 मनमंत्र के 7वें मनमंत्र के 28वें चतुर्युग के द्वापर और कलयुग में स्वयं भगवान आते हैं। ये इस वक्त 520 साल पहले और 5,000 वर्ष पहले भगवान स्वयं आते हैं कृष्ण के रूप में और चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो सिर्फ 520 साल पहले ही भगवान आए हैं। और देखिए जब भगवान स्वयं इस संसार में आते हैं तब उसका करंट हमारी भाषा में उसका करंट 10,000 वर्ष तक रहता है। भगवान जब इस संसार में आ जाते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु आ गए, 520 वर्ष हुआ, 520 वर्ष से उसका करंट 10,000 वर्ष तक रहता है, और उस 10,000 वर्ष के सिर्फ 520 वर्ष ही बीत नहीं, कलयुग के कितने बीते? 5,500 वर्ष बीत गए। वह करंट रहेगा 10,000 वर्ष तक, और 5,000 वर्ष बीत गए, 5,000 ही बाकी है। तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस 8,64,00,00,000 में से हम भगवान के बहुत ही निकट हैं, बहुत ही निकट। इसलिए हम यह सब कथा कर रहे हैं। जैसे आज हम ऐसी कथा कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, ये फिर लोग हमारी कथा करेंगे, हमारे बाप दादा जाते थे और सुनते थे, भगवान तो बहुत दूर रहेंगे उससे। ऐसा एक दिन समय आएगा, श्रीमद् भागवतम के अंतिम स्कंदों में वर्णन है कि एक दिन ऐसा घोर कलयुग आएगा कि भाई भाई को मारकर काट कर खाएगा। आज तक तो मनुष्य पशु को मारकर खाता है, अब मनुष्य मनुष्य को काटेगा और खाएगा, यहां तक कि भाई भी अपने भाई को काट कर खा जाएगा। इतनी भूखमरी होगी, क्यों? क्योंकि पाप बढ़ रहा है। इतनी भूखमरी होगी, दुकाल होगा, बारिश होगी, और उस वक्त कौन भजन कर सकता है? एक समय भी खाना नहीं मिलता है तो भजन नहीं होता है, और ऐसे युग में क्या भजन करोगे जब इस आज के युग में नहीं कर सकते? तो वास्तव में हम बहुत ही भाग्यशाली है, और इस भाग्यशाली का लाभ मौका लेना चाहिए। और इतने भाग्यशाली बनकर अगर हमने यह मौका नहीं लिया तो तब तो वैसा ही होगा जैसे गंगा के तट पर कोई प्यासा मर जाए। गंगा के तट के ऊपर रहने वाला व्यक्ति कोई प्यासा मर जाए तो क्या उसे मूर्खी कहा जाएगा कि गंगा नदी का प्रवाह जो बिस्लेरी का बाप है पानी, और ऐसे पानी के किनारे के ऊपर रहकर कोई मर जाए प्यासा तो यह तो दुर्भाग्य की बात है। ठीक उसी प्रकार ऐसे युग में, ऐसे सुवर्ण युग में हम अगर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हमारे लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं है। खैर, हम सब इस दुर्भाग्य से बच चुके हैं और भाग्यशाली बन गए हैं, और यही प्रूफ करता है कि आप यहाँ पर आए हो और भगवान की विशुद्ध लीला सुनने के लिए बैठे हो। तो आइए हम चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीला प्रारंभ करते हैं।